हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी ने जिस जमाने में यह शेर लिखा था, उस जमाने में कश्मीर भारत का दहकता मसला हुआ करता था, और तब जनसंघ नाम की पार्टी हुआ करती थी, जिसके लिए देश में कश्मीर ही एक मुद्दा था। बाद में यह पार्टी जनसंघ से भाजपा हुई और कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरी बना। तो यह शेर कश्मीरियों पर ज्यादा फिट बैठता है या भाजपा पर, यह तय नहीं किया जा सकता। इस बीच एक नाम जो भाजपा के लिए हमेशा मौजूद रहा और जिसको भाजपा कश्मीर से हमेशा जोड़ती रही, वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। एक व्यक्ति जो बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में जन्मा, लंदन में पढ़ा, जिसके पिता सर आशुतोष मुखर्जी अंग्रेजी सरकार द्वारा सम्मानित हुए, उस व्यक्ति के नाम को लेकर नागपुर से बने संगठन आरएसएस ने देशव्यापी चर्चा की। वो व्यक्ति विपक्ष में रहते हुए नेहरू की सरकार में शामिल हुआ और हिंदू मुसलमान के नाम पर हुए विभाजन के बाद कश्मीर में जाकर मरा। और फिर 2019 में जब भाजपा की केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी धारा 370 को हटाया, तो उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित किया। क्या थी ये कहानी, क्यों जरूरी है ये कहानी, आइए जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करवाई थी। इसी वजह से श्यामा प्रसाद को बचपन से ही विद्वान प्रोफेसर्स की संगत करने का मौका मिला। उनकी माता जोगमाया देवी एक सुलझी हुई महिला थी, जिनका प्रभाव श्यामा प्रसाद पर काफी हद तक पड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 16 वर्ष की आयु में मित्तर इंस्टीट्यूट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और फिर उन्हें बंगाल के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश मिला। वर्ष 1919 में उन्हें इंटर आर्ट्स की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और फिर 1921 में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पर आगे उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। उनके बारे में कई जगह लिखा हुआ है कि एमए के दौरान उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जागी और उन्होंने अंग्रेजी से पीछा छोड़ा लिया। वर्ष 1923 में बंगाली में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसी साल उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक यूनिवर्सिटी के संचालन में वाइस चांसलर पिता का सहयोग करते करते उनको काफी अनुभव हो गया। फिर उन्होंने डीलिट और एलएलडी की उपाधियां भी प्राप्त की। 1926 में वो लिंकन सेन इंग्लैंड में काम करने लगे। साल 1927 में उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। उसी साल उन्हें इंग्लिश बार में बुला लिया गया, लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की। इसी दौरान अप्रैल 1922 में जब वो एमए कर रहे थे, उनका विवाह सुधा देवी से हो गया। उस दौर में बच्चा पैदा करने का रिवाज था, तो इस दंपति के भी 4 बच्चे हुए, लेकिन ये वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाया और 1934 में डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी सुधा का निधन हो गया। श्यामा प्रसाद उस समय केवल 33 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने पुनर्विवाह न करने का निर्णय लिया। कॉलेज के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज के मैगजीन का संपादन किया, फिर बंगाली भाषा की बंगवाणी का भी संपादन किया। इसी ट्रेनिंग की वजह से बाद में द नेशनलिस्ट मैगजीन भी लॉन्च की। 1924 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की तरफ से बंगाल विधान परिषद में पहुंचे। फिर 1930 में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तो श्यामा प्रसाद स्वतंत्र रूप से फिर विधान परिषद पहुंचे। कांग्रेस से उनका अलगाव हो गया था। 1934 में 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। श्यामा प्रसाद के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बनने के पहले विवाद हुआ था। वो विवाद था ढाका के नवाब के भाई को लेकर। कहा जाता था कि बिना योग्यता के भी नेपोटिज्म के आधार पर नवाब के भाई को कुलपति बनाया जा रहा था। वहीं 33 साल की उम्र में एक बड़ी यूनिवर्सिटी का कुलपति बनकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक आप देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के शुरुआती जीवन की ही तरह था। अगर इन परतों को और उधाड़ें तो हम पाएंगे कि यह जीवन बिल्कुल वैसा ही था जो उस वक्त के संभ्रांत परिवारों के बच्चों का हुआ करता था। देश विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद संभ्रांत परिवारों के ये युवा अपना करियर चुनते थे और आजादी की तरफ बढ़ते हुए देश में अंततः राजनीति में आ जाते थे। पर यहां से कुछ ऐसा हुआ जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को अलग रास्ते पर मोड़ दिया। ये रास्ता कांग्रेस और गांधी का नहीं था, ना ही सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों का। यह रास्ता हिंदू धर्म के पुनर्जागरण को लेकर था। यह वक्त उथल पुथल का था। जिन्ना के नेतृत्व में एक अतिवादी मुस्लिम धड़ा एकत्रित हो रहा था, वहीं हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलना स्वीकार किया था और पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने 1932 के कम्युनल अवार्ड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग से हटा लिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दौरान फांसी भी हुई और देश में क्रांति का अलग रूप दिखने लगा था। साथ ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने न सिर्फ भारत में 1937 में पहली बार चुनाव कराए बल्कि भारतीयों को शासन करने का मौका भी दिया। साथ ही भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना की तरफ कदम भी बढ़ाया। इसके साथ ही यह द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर अंदर ही अंदर बढ़ते हुए राष्ट्र की बेवकूफियों को नजरअंदाज करने का वक्त था, जो आगे चलकर दुखदायी साबित हुआ। 1937 में जब चुनाव हुए तो ये सारी विडंबनाएं एक साथ आ गईं। बंगाल में 250 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 80 सीटें जनरल के लिए थीं और बाकी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट और ब्रिटिश नॉमिनी थे। कुछ सीटें औरतों के लिए सुरक्षित थीं। ये भी एक अलग अंदाज था भारत का, औरतों के लिए सुरक्षित सीटें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले धड़े ने कांग्रेस पर हिंदू हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई, लेकिन उन्होंने फिर से बहिष्कार किया। इसी दौरान विश्व युद्ध के आसार बनने लगे थे और कांग्रेस ने उसके मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू की। ऐसा माना जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव का फायदा उठाकर देश को आजाद कराया जा सकता है। यहां पर अपने पहले के आरोपों के विपरीत जाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजल अल हक की चीफ मिनिस्ट्री वाली सरकार बनाई। इसमें कांग्रेस को छोड़कर लगभग सारी पार्टियां शामिल थीं। इस बंगाल की प्रांतीय सरकार में वे वित्त मंत्री बने। श्यामा प्रसाद उसी दौरान विनायक दामोदर सावरकर से मिले और हिंदू महासभा में शामिल हो गए। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उस वक्त श्यामा प्रसाद से कहा था कि तुम हिंदू महासभा में कांग्रेसी दिमाग बनकर रहो, जैसे कांग्रेस में सरदार पटेल एक हिंदू दिमाग के साथ रहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। फिर 1943 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में अकाल पड़ने के बाद रिजाइन कर दिया। ये अकाल मानव निर्मित था, जिसमें अंग्रेजी सरकार की कुव्यवस्था शामिल थी। ऐसा मानव निर्मित अकाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था। अनाज से गोदाम भरे पड़े थे और लाखों लोग बंगाल में मर गए। यहां पर वो सारी राजनीतिक समस्याएं सामने आईं। जब कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहिष्कार किया तो श्यामा प्रसाद ने बंगाल में सरकार बनाई। जब अंग्रेजी राज की नीतियों की वजह से ही अकाल पड़ा तो श्यामा प्रसाद ने इस्तीफा दिया और हिंदू महासभा के रूप में लोगों की मदद करने लगे। ये दौर भारत के भविष्य को बदलने वाला था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ये सरकार कमजोर भी पड़ गई थी। भारतीयों को स्वराज का लॉलीपॉप देने आए क्रिप्स मिशन, वेवल मिशन इत्यादि फेल हो गए थे। वहीं जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर अलग देश की मांग के लिए अड़ गई थी। 1945 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें बंगाल में दंगे हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि अब दो राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुख का माहौल था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंग्रेजी सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधने में लगी थी और प्रशासन पर उसका ज्यादा ध्यान नहीं रह गया था। अगस्त 1947 में जब आजाद भारत की पहली सरकार बनी तो गांधी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सरकार में शामिल होने को कहा। यह अलग दौर था जब विपक्षियों को भी सरकार में शामिल किया जाता था। ये राष्ट्र के निर्माण का दौर था। उस समय अलग उत्साह था। श्यामा प्रसाद ने उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उसी दौरान चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी कारखाना और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्रियां बनी। लेकिन उस वक्त एक नई समस्या खड़ी हो गई। आजादी के बाद भारत का जो विभाजन हुआ उसमें भयानक धार्मिक दंगे हुए और लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां से विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास और उनकी सहायता का मुद्दा उठाया। 1950 में जब विस्थापन को लेकर नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ तो इसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। वो पहले मिनिस्टर थे जिसने रिजाइन किया था। इस्तीफा देते हुए उन्होंने संसद में एक लंबी तकरीर की जिसमें पॉइंट दर पॉइंट उन्होंने अपने सारे तर्क रखे। इससे पहले वो हिंदू महासभा भी छोड़ चुके थे क्योंकि उस महासभा ने सारे धर्म जातियों के लोगों को शामिल करने से मना कर दिया था। उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई थी। अक्टूबर 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अल्टरनेटिव राजनीति देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर से परामर्श लेकर राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 के पहले चुनाव में जनसंघ को 3 सीटें मिली थीं। खुद साउथ कलकत्ता सीट से चुने गए पर उन्होंने हार नहीं मानी और उड़ीसा के गणतंत्र परिषद, पंजाब की अकाली दल, हिंदू महासभा इत्यादि को इकट्ठा कर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जिसके वो लीडर रहे। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने संसद में तमाम बहसें की जिनमें से कई को याद किया जाता है। 1953 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल अनुच्छेद 370 को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर में जाने के लिए किसी को अनुमति न लेनी पड़े, पर उस वक्त प्रतिबंध लगा था। 1953 में 8 मई को वो बिना अनुमति के दिल्ली से कश्मीर के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद 10 मई को जालंधर में उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएं, ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। 11 मई को वो श्रीनगर जाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें वहां की जेल में रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 22 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई और 23 जून को उनकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। इसके बाद ही जनसंघ और फिर भाजपा ने यह नारा बुलंद किया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है।
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी भारत की अखंडता और एकता, और इसी के लिए 52 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आइए हम हमेशा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के संदेश को याद रखें।
आप सुन रहे हैं सत्ताधीश राजनीति का पॉडकास्ट। इसे लिखा है ऋषभ श्रीवास्तव ने और मैं हूं नवीन कुमार। ये द आइडियाज फैक्ट्री की प्रस्तुति है। हम जल्द ही हाजिर होंगे अपने नए एपिसोड के साथ, भारत के एक और नेता के जीवन की शानदार कहानी लेकर। सत्ताधीश को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, जियो सावन और सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।